चैनल हेड के पार्टी अनाउंस करने के बाद सभी एम्प्लॉयज लंच के लिए कैंटीन की तरफ बढ़ने लगे। वैदेही भी उनमें से एक थी। वो कैंटीन की तरफ जा रही थी तभी एक लड़की पीछे से दौड़ती हुई आई।
वैदेही, वैदेही, प्लीज स्टॉप,
उसने थोड़ा पीछे से आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर वैदेही वहीं पर रुक गई। वो पीछे मुड़ी और लड़की की तरफ देखकर कहा, नरगिस, कितनी बार कहा है कि जो भी बात बतानी है वो पास आकर भी तो बता सकते हो, ऐसे दौड़कर आने की क्या ज़रूरत है। नरगिस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो भागने की वजह से हाँफ रही थी। नरगिस उसके पास आ चुकी थी। वो अपनी बात कहने की कोशिश करती उससे पहले वैदेही बोल पड़ी, देखो कितना हाँफ रही हो तुम, चलो अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। वैदेही उसे लेकर अंदर आई। अंदर बैठते ही उसने उन दोनों के लिए लंच ऑर्डर किया और खाना आने तक दोनों एक टेबल पर बैठकर बातें कर रही थी। वैदेही, तुमने सुना ना प्रतीक सर ने क्या कहा था?
हाँ, पार्टी और प्रमोशन। प्रमोशन तो मेरा हो रहा है और पार्टी को लेकर तो तुम इतना एक्साइटमेंट कभी नहीं हुई, फिर ऐसी क्या बात थी कि तुम मेरे पीछे भाग कर आ रही थी? वैदेही ने हैरानी से पूछा।
प्रतीक सर ने कहा था कि पार्टी में सभी फेमस पर्सनैलिटीज को बुलाया जाएगा, इसका मतलब पार्टी में वो भी आएगा, नरगिस ने चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वैदेही हल्की हंसी।
कौन,
वरुण धवन? मैं वरुण धवन की बात नहीं कर रही हूँ, नरगिस ने आंखें तरेर कर जवाब दिया। स्टार्स की पार्टी में तो हमें अक्सर शामिल होने का मौका मिल जाता है और मैं उससे मिल भी चुकी हूँ, लेकिन।
लेकिन क्या?
लेकिन इस बार पार्टी में फिल्म स्टार के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को भी बुलाया जाएगा। कितना अच्छा हो जो यशवर्कन सिंह भी इस पार्टी में आए। अरे उसके आगे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स भी फेल हैं। क्या पर्सनैलिटी है उसकी, टॉल, टस्की, हैंडसम। बात करते हुए नरगिस एक अलग ही दुनिया में खो गई थी।
तुम ये बताने के लिए इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही थी, हद करती हो तुम भी नरगिस, और ज्यादा सपने मत बुनो, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी पार्टी अटेंड करने आएंगे।
वैदेही की बात सुनकर नरगिस का मुंह बन गया। वो उसे घूर कर देखने लगी और फिर जवाब में कहा, मैं तो उन्हीं की पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ, देखना इस बार सीएम वही बनेंगे।
हाँ, सब कुछ आपको पूछकर ही तो होने वाला है जो यशवर्धन सिंह सीएम बनेंगे,
वैदेही ने इरिटेट होकर जवाब दिया। उनका खाना आ गया था, दोनों चुपचाप बैठकर खाना खा रही थी। वैदेही खाना खाते हुए अपने मन में यशवर्धन सिंह के बारे में सोच रही थी। नरगिस भी ना, पहले वरुण धवन से मिलना था तो उसके लिए इतनी एक्साइटेड होकर रहती थी, और अब यशवर्धन सिंह, वो भला किसी भी चैनल की एनिवर्सरी पार्टी में क्यों आएगा? वो तो इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी पहले हजारों चक्कर निकलवाता है, उसके पास इस पार्टी में आने के लिए कहाँ टाइम होगा। अपने ख्यालों में गुम वैदेही का खाना खत्म हो चुका था, उसके बावजूद वो खाली प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। उसे ऐसा करते देख नरगिस ने उसके आगे चुटकी बजाई और कहा, हेलो मैडम, अब आप किसके ख्यालों में खो गई जो ये भी पता नहीं चला कि खाना खत्म हो चुका है। फिर नरगिस की नज़र वैदेही के कपड़ों पर गई जहां पर थोड़ा खाना गिरा हुआ था। लगता है आज वैदेही मैडम के साथ साथ उनके कपड़ों ने भी खाना खा लिया, मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस लगता है। तभी अपने आसपास सफाई रखने वाली वैदेही रघुवंशी ने खुद ही मैस फैला दिया। नरगिस की बात सुनकर वैदेही ने अपने कपड़ों पर लगा हुआ खाना साफ किया। ऐसा कुछ नहीं है, वैदेही ने कहा और वहां से सीधे अपने केबिन में आ गई। उन सबका दिन हमेशा की तरह सामान्य था, जहां पर रोज की तरह 8 बजे वैदेही और नरगिस की शिफ्ट खत्म हो गई। उनके वहां से जाने के बाद उनकी जगह नाइट शिफ्ट वाले रिपोर्टर्स ने ले ली थी। संडे के दिन वैदेही और नरगिस ने पार्टी के लिए शॉपिंग की, जहां उन्होंने पार्टी में पहनने के लिए कपड़े और कुछ एक्सेसरीज वगैरह खरीदे। शॉपिंग से आते ही वैदेही सोफे पर पसर गई। वो अपने फ्लैट में अकेले रहती थी, नरगिस उसी के ऑफिस में काम करती थी और उसकी फ्रेंड थी। उसे घर पर अकेलापन महसूस ना हो इसलिए उसने उसे किरायेदार के तौर पर रख लिया था। क्या यार नरगिस, इस एक दिन की पार्टी के लिए तुमने इतनी सारी शॉपिंग करवा दी, पूरे दिन से घूम रहे हैं, अब तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, वैदेही ने सोफे पर लेटे लेटे बोला।
मैंने गेस्ट लिस्ट देखी थी, उसने यशवर्धन सिंह का भी नाम था, मैं उनसे पहली बार मिलने वाली हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरा इंप्रेशन खराब हो।
तेरा इंप्रेशन तू जाने, लेकिन मुझे क्यों बेवजह इतनी भारी भरकम ड्रेस दिलवा दी? ऑलरेडी कपड़ों का इतना स्टॉक पड़ा है।
तुम मेरी फ्रेंड हो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी स्पेशल दिखो, नरगिस ने कहा। उसकी बात सुनकर वैदेही ने मुंह बनाया।
हाँ जरूर, वो आते ही सबसे पहले यही तो पूछने वाले हैं कि कहाँ है मैडम नरगिस फारूकी, मुझे उनसे मिलना है। और हाँ, उनकी वो फ्रेंड वैदेही रघुवंशी, उनकी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वैदेही ने मजाकिया तरीके से कहा और फिर दोनों साथ में हंसने लगी। अगले दिन रात के समय मुंबई के एक 7-स्टार होटल में चैनल 24/7 इंडिया की एनिवर्सरी पार्टी हो रही थी। वो पार्टी किसी बड़े अवार्ड शो की पार्टी से कम नहीं थी, जहां पर काफी सारे स्टार्स, पब्लिक फिगर्स, पॉलिटिशियन और उसे कवर करने के लिए मीडिया मौजूद थी। नरगिस ने अपने लिए गोल्डन कलर का इवनिंग गाउन खरीदा था, तो वहीं वैदेही ने अपने लिए ब्लैक कलर का ड्रेस लिया था। नरगिस ने खुद के लुक को काफी परफेक्टली सेट कर रखा था, वहीं वैदेही उस बड़े से इवनिंग गाउन में काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो अक्सर ऑफिस सूट में ही रहती थी, इस तरह के कपड़े उसे शो ऑफ करने वाले और लाउड लगते थे।
क्या कर रही है यार, ठीक से खड़े तो हो जा, नरगिस ने धीमी आवाज में वैदेही के पास जाकर कहा। उसने दूर से ही वैदेही के एक्सप्रेशन से पता लगा लिया था कि वो उस ड्रेस में सहज महसूस नहीं कर रही थी।
आर यू सीरियस? ये क्या पहना दिया है मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे स्वच्छ इंडिया अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनकर आई हूँ, तभी चलते हुए आगे पीछे की सफाई कर रही हूँ। ये इतना बड़ा क्यों है? वैदेही ने अपने गाउन को संभालते हुए कहा। अभी तुम्हारे नाम की अनाउंसमेंट होने वाली है, तब तक इसे संभाल लो, उसके बाद में जाकर चेंज कर लेना। स्टेज पर मौजूद प्रतीक शर्मा सभी रिपोर्टर्स का नाम लेकर उन्हें उनकी उपलब्धि के हिसाब से अवार्ड दे रहे थे। अब बारी आती है इस चैनल की सबसे डेयरिंग रिपोर्टर की। भाई, मैं तो इसका नाम बदलकर डेयरिंग गर्ल रखने वाला हूँ। कोई भी काम करने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाती, और इसका सबूत आप सबकी आंखों के सामने है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन है? प्रतीक के कहते ही भीड़ में वैदेही का नाम गूंजने लगा। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना, वैदेही रघुवंशी, जिसने मात्र 2 साल पहले इस चैनल को ज्वाइन किया था, और आज वैदेही को देश में सभी जानते हैं। मैं वैदेही से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ले। प्रतीक के कहने पर वैदेही स्टेज पर अवार्ड लेने पहुंची। वैदेही वहां पहुंची ही थी कि प्रतीक ने फिर से अनाउंसमेंट करते हुए कहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, मैं चाहता हूं वैदेही ये अवार्ड हमारे शहर के सबसे फेवरेट और यंग पॉलिटिशियन मिस्टर यशवर्धन सिंह के हाथ से ले। यशवर्धन सिंह का नाम सुनते ही वैदेही ने सामने की तरफ देखा, जो कि बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। उसने सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहन रखे थे और मुस्कुराता हुआ स्टेज की तरफ आ रहा था। उसे वेलकम करने के लिए प्रतीक उसके पास गया। सो गुड टू सी यू हियर सर, मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ आएंगे, प्रतीक ने हाथ मिलाते हुए कहा। यशवर्धन सिंह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। उसके बाद प्रतीक उसे स्टेज पर लेकर गया, जहां वैदेही अपने अवार्ड लेने का इंतजार कर रही थी। ये एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होने वाला है, जहां पर हमारे युवा नेता युवा रिपोर्टर को अवार्ड देने जा रहे हैं। अगर दोनों के काम की बात करूं, तो दोनों ही देश के हित के लिए बिना डरे हमेशा अटल रहे हैं, प्रतीक माइक में यशवर्धन सिंह की तारीफ कर रहा था।
यशवर्धन सिंह ने मुस्कुराते हुए सामने हाथ जोड़े और उसे अवार्ड दिया। अवार्ड लेने के बाद उसने अपना हाथ वैदेही की तरफ बढ़ाया और हाथ मिलाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस वैदेही जी, आप हमेशा से यंग जेनरेशन की प्रेरणा रही हैं, आपसे मिलना हमारा सौभाग्य है। उसकी बात सुनकर जवाब में वैदेही मुस्कुरा दी और अपना हाथ छुड़ाकर वापस नरगिस के पास आई। प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इन सब के बीच यशवर्धन सिंह की निगाहें सिर्फ और सिर्फ वैदेही पर टिकी थीं।